अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के षष्ठ प्रकरण का विचार हो रहा है। आचार्य पिपलाद जी ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सुकेशा के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऋषि सुकेशा का प्रश्न है षोडश कल पुरुष विषय को। षोडश कलाएं हैं पुरुष शब्दित परमात्मा का विवर्त कार्य। परमात्मा है षोडश कलाओं का अधिष्ठान आश्रय। परमात्मा से ही प्राणादि 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, परमात्मा में स्थित हैं, परमात्मा में ही विलीन होती हैं। इन 16 कलाओं का विलय परमात्मा में होता है सुसुप्ति में, तो होता है नित्य प्रलय। सुसुप्ति में भी ये 16 कलाएं परमात्मा में विलीन हो जाती है प्राण आदि, और वो अज्ञान उपाधिक परमात्मा में विलीन होती है। ऐसे महाप्रलय के समय भी अव्याकृत उपाधिक परमात्मा में इन 16 कलाओं का लय होता है, और अज्ञात परमात्मा से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। ज्ञात परमात्मा बंधन का उच्छेदक है, और निर्विशेष जो परमात्मा है वो है अव्याकृत रूप उपाधि से भी रहित परमात्मा, और उस परमात्मा के ज्ञान से अव्याकृत कहो या अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान कहो निवृत्त होता है। और फिर अज्ञान निमित्त ही ये सारी कलाएं थी, वे अपना निमित्त अज्ञान निवृत्त होने से निवृत्त हो जाती है। अज्ञान जहां गया वहीं जाती है। तो अज्ञान कहां जाता है? तो अज्ञान भी कल्पित है, अज्ञान का कार्य भी कल्पित है। जिस अधिष्ठान में उससे वह अलग था ही नहीं, केवल भास रहा था। ऐसे जैसे ही पूर्ण परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव होता है, तो अज्ञान रूपी अपने कारण सहित ये 16 कलाएं परमात्मा में विलीन होती हैं। इसे नदी के दृष्टांत से आचार्य पिपलाद जी ने सुकेशा को समझाया। नदिया जैसे समुद्र के पास आते ही नाम रूप को छोड़ देती हैं और समुद्र बन जाती है, फिर उनका अपना पूर्व नाम नहीं रहता, पूर्व रूप भी नहीं रहता, उन्हें समुद्र रूपता की प्राप्ति होती है और समुद्र नाम से ही कही जाती है। ऐसे जिस ज्ञानी का ज्ञान से अज्ञान सहित उपाधि भूत 16 कलाएं निवृत्त हो गई है, वह उसका जीव भाव मिट जाता है। इन्हीं 16 कलाओं के साथ आविद्यक तादात्म्य अभिमान करने से 16 कलाओं में से किसी न किसी कला रूप अपने को समझता है, परिचिन्न बन जाता है, वह औपाधिक रूप है। तो नदियों का जैसे परिचिन्न रूप समाप्त होता है और अपरिचिन्न समुद्र भाव को प्राप्त करती है, ऐसे संसारी जीव भाव ज्ञान से निवृत्त होता है और असंसारी ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है जीव में। जीव स्वयं असंसारी ब्रह्म रूप से कहा जाता है, इसलिए कहा कि पुरुष इत्येव अभिधीयते। शास्त्र में श्रुतिया फिर उसे ब्रह्म इस नाम से ही कहती है। उनका जो उपाधि निमित्तक नाम था उस नाम से नहीं। तो दो बातें बताई गई, एक तो कलाएं पुरुष आश्रित है और पुरुष ज्ञान से कलाओं का निमित्तभूत अज्ञान निवृत्त होता है, तो कला निमित्तक संसार भी जन्म मरणात्मक समाप्त होता है, वो अकल हो जाता है, कला रहित हो जाता है, निष्कल हो जाता है ज्ञानी। और कला निमित्तक जो मृत्यु की अनुभूति अभी तक हो रही थी वो अनुभूति भी नहीं होगी कलाएं न रहने से, इसलिए कहा अमृतो भवति। तो पंचम कंडिका में उक्त अर्थ हुआ, एक तो कला रूप जगत का परमात्मा आश्रित होना और दूसरा परमात्मा ज्ञान से कला की निवृत्ति होने से जन्म मरणात्मक संसार की निवृत्ति परमात्मा ज्ञान से। इसे ब्राह्मण भाग के द्वारा बताया गया। जो अर्थ ब्राह्मण ने बताया उसी को यदि मंत्र भी बताएगा तो ब्राह्मण भाग के द्वारा बताया गया अर्थ साधक के लिए जिज्ञासु के लिए अति उपादेय होता है, अति श्रद्धेय होता है। उसी दृष्टि से ये कहा गया कि तदेश श्लोक तत् यानी तस्मिन् अर्थे ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त जो अर्थ है कि प्राणादि षोडश कलात्मक जगत परमात्मा के आश्रित है, परमात्मा उनका आश्रय है और परमात्मा ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इस अर्थ को समझाने के लिए ये मंत्र भी है। मंत्र भी यही बता रहा है जो ब्राह्मण ने बताया। वो मंत्र है अरा इव रथनाभो कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। ये मंत्र है, इससे भी यही बात बताई जा रही है कि जैसे रथ चक्र के कई एक अवयव होते हैं, उसमें अरा नामक एक अवयव भी होता है, वो कई होते हैं, एक नाभि होती है, एक नेमी होती है, बाहरी जो गोलाकार लकड़ी है उसे नेमी कहते हैं, बीच वाली जो गोलाकार लकड़ी है नाभि कहते हैं, और नाभि और नेमी के बीच में जो लंबी लंबी लकड़ियां लगी रहती हैं साइकिल या मोटरसाइकिल के चक्कों में, जैसी वो लोहे की वो छेड़े लगी रहती है ना, ऐसे ऐसे लकड़ी की रहती है, उसे आरे कहते हैं। वो नाभि में रथ चक्र को बनाने वाला छेद करके उन आरों को अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करता है। एक अंश अरुण का नाभि आश्रित है और दूसरा नेमि के आश्रित है, तो नेमि और नाभि के बीच में जो अरे हैं, रथ कितना भी दौड़े वे निकलते नहीं है, क्योंकि नाभि के आश्रित हैं। ऐसे यहां पर यही दृष्टांत बताया है कि इव यानि यथा, जैसे कि रथ नाभो आरा प्रतिष्ठिता, तो रथ की नाभि में अरे प्रतिष्ठित है, आश्रित है, उसके आश्रित हुए बिखरते नहीं है, वो रथ के गतिमान होने पर भी। ऐसे ही संसार की स्थिति काल में, अज्ञान अवस्था में, संसार का स्थिति काल है अज्ञान अवस्था, तो अज्ञान अवस्था में इन कलाओं का कारणभूत अज्ञान सहित ये सारी कलाएं दृष्टांतगत नाभिस्थानीय परमात्मा के आश्रित है, और कलाएं हैं दृष्टांतगत अराओं के स्थान पर। तो ये प्राणादि कलाएं अरों के तरह अरे हैं, परमात्मा नाभि के तरह नाभि है, तो नाभि आश्रित अरे जैसे बिखरते नहीं है, ऐसे स्थिति काल में परमात्म अधिष्ठित यह कलाएं बनी रहती हैं, प्रतिष्ठित है, आश्रित है, सत्तावांसी प्रतीत होती है, बिखरती नहीं है। और ये यहां पर कहा कि जैसे रथ के नाभि में रथ चक्र के अवयव रूप अरे आश्रित हैं, तो यस्मिन् कला प्रतिष्ठिता, जिस पुरुष में कलाएं प्रतिष्ठित हैं, जो कलाओं का आश्रय है। संस्कृत में कहा जाता है यत सर्वनाम और तत् सर्वनाम, इनका नित्य संबंध होता है, यत तदोर नित्य संबंध। तो यत शब्द जिस अर्थ का परामर्शक होगा, जिस अर्थ को बताएगा, उसी अर्थ को बताता है तत् शब्द। तो मंत्र के पूर्वार्ध में यस्मिन् यत शब्द का ही सप्तमी का एक वचन है, इसलिए यह यत शब्द जिस अर्थ को बताएगा, उत्तरार्ध में प्रारंभ में आया हुआ जो तत् शब्द है द्वितीयांत तम, वो भी उसी अर्थ को बताएगा। दोनों का नित्य संबंध होने से एक अर्थ के परामर्शक होते हैं। तो यस्मिन् कला प्रतिष्ठिता, इसमें यस्मिन् शब्द परामर्शक है पुरुष का, यस्मिन् कला प्रतिष्ठिता यानी यस्मिन् पुरुषे कला प्रतिष्ठिता, कलाओं का जो आश्रय है पुरुष, कलाएं जिसके आश्रित हैं, तो तम ये शब्द उसी कलाओं के आश्रयभूत अधिष्ठानभूत पुरुष का परामर्शक होगा, इसलिए तम पुरुषम। और पुरुष का एक विशेषण है वेद्यम, तो दो विशेषण हो गए, एक तम और वेद्यम। वेद्य कहते हैं जानने योग्य, मनुष्य जीवन पाकर के यदि जानने योग्य कोई वस्तु है, होना तो चाहिए, जो जानने योग्य है, जिसको जानना बहुत जरूरी है, वहां पर प्रवेश मिलना कठिन। वहां प्रवेश के लिए तो होना चाहिए किसी न किसी का परिचय हो जाए और हमें प्रवेश मिल जाए। ये अध्यात्म विद्या भवन का हॉल में बैठने की अनुमति मिले इसके लिए फोर्स लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि वेद्य पुरुष मानव जीवन पा करके जिसको जानना जरूरी है, आवश्यक है, जिसको जाने बिना यदि मनुष्य शरीर छूट जाता है और मानव शरीर में आया हुआ जीव जिस पुरुष को जाने बिना चला जाता है, उसे वेदों ने बताया कि वो कृपण है, कृपण हो जाता है। और जिसको जाने बिना ये शरीर छूट जाता है, कहते सबसे बड़ा अनर्थ वही है। और सबसे बड़ा अर्थ यदि है तो पुरुष को जानना, वेद्य है, जानने योग्य। तो परम हित कि जब बात आती है तो ये आत्मज्ञान को ही परम हित कहा गया है। और ये केवल मनुष्यों ने मात्र नहीं कहा, देवता भी कहते हैं मनुष्य जीवन का परम हित यदि कोई है तो आत्मज्ञान है। एक कौशितकी ब्राह्मण में राजा प्रतर्वन और इंद्र का संवाद आता है ना, मनुष्य इतने शक्तिशाली हुआ करते हैं और अधिकारी हुआ करते हैं कि देवता भी उनकी सहायता मांगने आते हैं। पहले आते थे, उपनिषदों ने बताया, और दशरथ भी गए थे नहीं देवताओं को युद्ध में सहायता करने के लिए, इसलिए तो। और उनके रथनाभि में से वो जो लोहा का वो डंडा होता है टूट गया था, तो कैकेयी ने अपने हाथ से थमाया था उस चक्र को, इसलिए कैकेयी को वरदान मांगने के लिए कहा था तो उसने कहा था कि हम समय पर मांगेंगे। तो वो उस समय राजा दशरथ देवताओं के ही सहायता के लिए गए हुए थे। ऐसे कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में आता है कि देवासुरों की एक बार लड़ाई हुई, कई दिनों तक चली, और उस युद्ध में देवता पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, असुर पक्ष थोड़ा बलवान होने लगा। तो निश्चित है बलवान दुर्बल का पराजय करता है, तो देवता हारने लगे। तो रात्रि में विचार होता ही है कि कल कैसे युद्ध करना है, नीतियां बनती है ना। 24 घंटा पहले युद्ध नहीं हुआ करता था, युद्ध के भी नियम हुआ करते थे ना। तो बृहस्पति ने इंद्र को बताया कि देखो ऐसा ही यदि हुआ तो देवताओं की हार निश्चित है, इसलिए देवताओं को सहायता के लिए मनुष्यों को बुलाना जरूरी है। पृथ्वी लोक पर राजा प्रतर्दन बड़े पराक्रमी हैं, उनको दूत भेज करके अपनी सहायता के लिए बुला लो, और यदि वो स्वीकार कर ले तुम्हारी सहायता करना इस युद्ध में, तो तुम्हारी जीत निश्चित हो जाएगी। इंद्र ने मानी सलाह, भेजा प्रतर्वन के पास अपना दूत, राजा प्रतर्वन ने भी स्वीकार किया और गए युद्ध में सहायता के लिए और खूब पराक्रम किया। देवता जिस युद्ध को हार रहे थे उस युद्ध को राजा प्रतर्वन के पराक्रम से ही देवताओं ने जीत लिया, और जब देवता जीते, काफी परिश्रम हुआ असुरों को हराने के लिए, थक गए राजा प्रतर्दन, लेकिन इंद्र को जीत दिलाई तो इंद्र भी बड़े खुश हुए और कहा कि थकान दूर करने के लिए आप सारी सुविधाओं से संपन्न जो मेरा महल है उसमें चलिए, वहां आराम करिए। बहुत दिनों तक विश्राम किया, उसके बाद फिर कहा कि अब मैं जाता हूं अपने राज्य में। तो जाते जाते इंद्र ने कहा कि कुछ वर मांगिए, आपको कुछ देना चाहता हूं। तो इंद्र ने जब ये प्रस्ताव रखा वर का, तो राजा प्रतर्वन ने कहा कि आप स्वयं ही मनुष्यों के लिए जो अति हित समझते हो, कल्याणकारी समझते हो, वो सोच करके दे दीजिए। तो इंद्र ने आत्मज्ञान को ही मनुष्यों के लिए परम हित, उपकारक, कल्याणकारी समझा और राजा प्रतर्दन को यही पुरुष विद्या दी, आत्मज्ञान कराया। तो देवता भी मनुष्यों के लिए यदि कोई परम हित समझते हैं तो वो है आत्मज्ञान ही, और उस आत्मज्ञान का जो विषय है उसे कहा जाता है वेद्य। और भगवान कृष्ण स्वयं भी अपने मुख से कहते हैं, यदि वेदों के द्वारा वेदनीय कोई है तो मैं हूं। भगवान ने कहा है ना गीता में, कौन से श्लोक में, वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, तो मैं ही समस्त वेदों से वेदनीय हूं। यदि वेद पढ़ लिए लेकिन पुरुष का ज्ञान नहीं हुआ तो वेद पढ़ना, विवेक चुड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति स्थुनिष्फला, शास्त्र का खूब अध्ययन किया लेकिन पर तत्व शब्दित जो पुरुष है जिसे यहां पर वेद्य बता रहे हैं उसे नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, शास्त्र का खूब अध्ययन किया, कहते वह शास्त्राध्ययन निरर्थक है, निष्फल है, व्यर्थ है, शास्त्राधीति स्तु निष्फला। तो वो, और जिसने एकाध ग्रंथ भी ठीक से पढ़ लिया लेकिन परमात्मा को जान लिया, जिसे यहां पर वेद्य कहा जा रहा है, षोडश कलाओं का आश्रय कहा जा रहा है, उसे जान लिया, तो गीता में भगवान कहते हैं मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है वो। सबसे बुद्धिमान कौन है, जिसने वेद्य पुरुष को जान लिया, जिसने अपना परम हित साध लिया उसे बुद्धिमान माना जाएगा। और परम हित है आत्मज्ञान, और फिर उसका कुछ कर्तव्य भी बाकी नहीं रहता, वो कृतकृत्य हो जाता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, इसे एतद् यानी यही, जिसे यस्मिन् कला प्रतिष्ठिता, इस वाक्यस्थ यस्मिन् शब्द से लिया जा रहा है, और तम वेद्यम में तम तथा वेद्य शब्द से कहा जा रहा है, उस वेद्य पुरुष को जिसने जान लिया। एतद् बुद्ध्वा में एतद् शब्द से उसी वेद्य पुरुष के स्वरूप को लेना, ब्रह्म तत्व को लेना, और उसे जिसने मैं के रूप में जान लिया तो कहते हैं सबुद्धिमान, उससे बढ़कर के बुद्धि वाला कोई नहीं है दूसरा। बुद्धिमान किसको कहते हैं, जिसको सबका ज्ञान है, बहुत कुछ जान लेता है, वही बुद्धिमान कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। और परमात्मा को जानने के बाद बाकी क्या रहता है जानना, तो परमात्मा को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है। इसलिए जिसने सब कुछ जान लिया, कुछ भी जानना बाकी नहीं है, वो बुद्धिमान है, या कुछ को जानता है कुछ को नहीं जानता है वो बुद्धिमान माना जाएगा। तो जिसको सबका ज्ञान है, और सबका ज्ञान किससे होता है? परमात्मा को जानने से। इसलिए माना जाएगा कि वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है मनुष्य, और वह कृतकृत्य है। कृतकृत्य कहा जाता है, कृत्य कहते हैं कर्तव्य को, कृत्य यानी कर्तव्य, जिसको करना जरूरी है उसे कर्तव्य कहते हैं। वेद्य कहते हैं जिसको जानना जरूरी है वह वेद्य, और जिसको करना आवश्यक है वह कर्तव्य, उसी को कृत्य कहा जाता है। और वो कृत्य यानी अवश्य जो करना चाहिए वो कर लिया है जिसने। कृत कृत्य में जो कृत शब्द है ना, पहला कृत, उसका अर्थ है कर लिया है। क्या? तो अवश्य करने वाला काम जिसने कर लिया है उसे कहा जाता है कृतकृत्य। अब कुछ भी करना जिसका बाकी रहा नहीं है, कृतार्थ हो गया। तो ये तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत के अनुसार परमात्म ज्ञान कृतार्थ कर देता है। इसलिए कलाओं के आश्रयभूत परमात्मा को यह मंत्र बता रहा है कि वेद्यम, वो वेद्य है जिसको जानने से। वेद्य कहते हैं वेदन के विषय को, वेदन कहते हैं ज्ञान को, तो इसलिए वेद्यम का अर्थ हुआ ज्ञेयम, जिसको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा वह कलाओं का आश्रयभूत कौन है? पुरुष, पूर्ण तत्व। और उसे आचार्य कहते हैं पिपला जी की वेद यथा, वेद यथा एक पद है यानी जानीय, इस अर्थ में यूयम वेद यथा, ये वैदिक प्रयोग है, था के जगह लोक में त हो जाएगा, वेद यत यानी आप लोग जानो। जो ये लोट लकार होने से उसका अर्थ निकलता है बहुत जरूरी है जानना। इस वेद्य कलाओं के आश्रयभूत पुरुष को आप लोग जानो, ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य पिपला जी। किनको? सुकेशा आदि सभी ऋषियों को। ये नहीं कि जिसने प्रश्न किया वही सुन रहे हैं और बाकी अपने अपने कमरे में जाकर के विश्राम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। छह के छह शुरू में विशेषण है उनका, परम ब्रह्म अन्वेष माना, इसलिए सभी के प्रश्न का उत्तर सभी ने सुना है। सभी एक साथ बैठते हैं और एक एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर सभी सुनते हैं। तो सुकेशा के प्रश्न का उत्तर भी अकेले सुकेशा ही नहीं सुन रहा है, छह बैठे हुए, इसलिए बहुवचन है वेदयत। नहीं तो कहते वेदय, जानो समझो विजानी ही, ऐसा। तो त्वम वेद, ऐसा नहीं कहा वेदयत, आप लोग जानो, ऐसा आचार्य पिपला जी कह रहे हैं कि जीवन, मनुष्य जीवन में जिसको जानना अति आवश्यक है वह कौन है? तो ये कलाओं का आश्रयभूत पूर्ण पुरुष है, ऐसा आप लोग समझो। और इसे जानने से, जानना क्यों, जानने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, आवश्यक बता रहे हैं, तो कहते इसलिए कि इसको जानेंगे तो जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्त होंगे, और इसको नहीं जानेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये होता रहेगा। भले ही इसको जाने बिना ब्रह्मलोक भी जाए तो इस कल्प में भले ही वापस न आना पड़े, लेकिन कल्पांतर में जरूर आना होता है ब्रह्मलोक से, यहां भी वापस, यदि ज्ञान नहीं हुआ वहां पर भी, और वहां ज्ञान किसको होता है, जो यहां से जिज्ञासा लेकर के जाते हैं उन्हीं को वहां ज्ञान होता है। यहां का अद्वैत वेदांत अध्ययन का सर्टिफिकेट देख करके ही वहां के अद्वैत विश्वविद्यालय में ब्रह्मा जी प्रवेश देते हैं। वो ट्रस्टियों की तरह थोड़े कि आइए आपकी सारी व्यवस्था है यहां पर, बिना प्रमाण पत्र के भी वेदांत सुनिए। ये तो ईश्वर ने मनुष्य शरीर में सारी सुविधाएं दी है, क्योंकि लाडला बच्चा है ना मनुष्य ईश्वर का। जो किसी का लाडला होता है वो ज्यादा ही लाड़ के कारण बिगड़ा हुआ भी होता है, तो इसलिए पिता सोचते हैं सुधारने के लिए और कुछ सुविधाएं देंगे तो वो और ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उस दृष्टि से, लेकिन ब्रह्मा जी बहुत कड़क स्वभाव वाले हैं, उनके यहां पूरी योग्यता को देख करके ही मेरिट के आधार पर ही एडमिशन मिलता है, वहां पर डोनेशन से नहीं मिलता। सुनते हैं कि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में डोनेशन से भी नंबर कम होने पर भी मिलता है, लेकिन ऐसे कोई वहां सीट खाली नहीं है कि यहां अद्वैत के संस्कार नहीं प्राप्त किए और वहां जाकर के कुछ ब्रह्मा जी के विश्वविद्यालय में दान दे और एडमिशन प्राप्त कर ले। ये नहीं संभव है, इसलिए संभव नहीं है कि ब्रह्मा वहां तो सत्य संकल्प है ना, और पूर्ण विकसित लोग हैं, वहां कोई मरम्मत करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ संकल्प से होता है सारा निर्माण। दहर विद्या के प्रकरण में आता है कि वहां वो कुर्सियां भी, फर्श भी, वाले भी सोने की हैं, स्वर्ण निर्मित मंडप है उनका, स्वाध्याय कक्ष सीमेंट और पत्थर आदि से बना हुआ नहीं है, और वहां ब्रह्मा जी बैठ करके स्वाध्याय कराते हैं और वेदांत का, और वो स्वाध्याय फिर होने के बाद रस पीने के लिए देते हैं एक मात्रा में ही। वो बड़े बड़े सरोवर है रस के, अमृत के, अमृत देवताओं का अमृत अलग और यहां का अमृत अलग ब्रह्मलोक का। अरश्च न्यश्च, ऐसा अर और न्य नाम के दो सरोवर हैं, और वहां आपको जैसे ही प्यास लगेगी, संकल्प होगा पीना है, तो जितनी मात्रा में पीने का संकल्प करेंगे सोने के एक ग्लास में अपने आप उस ताजा फ्रेश जूस वो सर में से भर करके आता है, जिसको 100 ml पीना है उतना ही आएगा, और फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं, ग्लास आपके मुंह में लग जाएगा, बराबर वो आपके मुंह में ठीक से उतर सके उतना ही घूमेगा उतने एंगल में, और फिर जाकर के स्वयं साफ होकर के जहां रखे जाते हैं बर्तन वहां पर रहेगा, स्वयं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इतना विकास हुआ हुआ है, और फिर वहां ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी से मिलता है, ये कहा जाता है। लेकिन और ये सहसा मनुष्य शरीर ब्रह्मलोक वहां पहुंचना कठिन है, सबको आने ही नहीं देता है। ब्रह्मलोक जब जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, उसको वैतरणी कहा जाता है ना, वो बहा करके ले जाती है, थोड़ा भी विरजा नदी का जगह है। रज कहते हैं मल को, अशुद्धि को, और चित्त में थोड़ी भी अशुद्धि होगी तो वो बह जाता है उस नदी में, फिर संसार समुद्र में वो नदी ला करके किसी किनारे लगा देती है, संसार में ब्रह्मलोक में नहीं जाने देती। और वो पार कर लेता है पूर्ण शुद्ध चित्त वाला भगवान का भक्त उपासक, और फिर वहां ज्ञान होता है स्पष्ट। लेकिन और एक मनुष्य शरीर में होता है, इन दो में से मनुष्य शरीर तो वर्तमान में हमें उपलब्ध है और कोई पता नहीं है शरीर छूटने के बाद ब्रह्मलोक प्राप्त तो होगा ही कि नहीं होगा। अपनी साधना पर भी इतना विश्वास होना चाहिए ना, आत्मविश्वास। जो भगवान के पूर्ण भक्त होते हैं उनको तो विश्वास होता है, इसलिए ईशावास्योपनिषद के अंतिम अंतिम मंत्रों में शरीर छूटने का समय जब जिसको अपनी साधना पर विश्वास है उसका शरीर छूटने का समय आता है तो भगवान को कहता है, पहले तो प्रार्थना करता है, हिरण्मय नपात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। आपका जो आवरण है इसे हटाइए, क्यों? तो आपके सत्य स्वरूप को मैं देख सकूं। और यदि ये कहो कि तुम प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भिक्षुक बनकर के आए हो, तो ऐसी बात नहीं है। कहता है मुझे विश्वास है, मैंने जीवन भर ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन भूत कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया है, और मेरा अकाउंट खोल करके आप देखिए, थोड़ा चेक में भरा हुआ अमाउंट कुछ ज्यादा लग रहा है, और आपको संशय हो रहा है कि इसमें मैनेजर को कि इतना है भी कि नहीं अकाउंट में, तो देखिए थोड़ा अपना खोल करके हमारी फाइल। ऐसे कहते हैं कृतम स्मर, कृतम स्मर, ऐसे बार बार मैंने जो किया है, कृतम स्मर कृतम स्मर, मेरे कर्म और उपासना का स्मरण करिए, आप कर्म फल दाता है। मैं आपको भीख नहीं मांग रहा हूं, ऐसे अंतिम समय भी भगवान को डांटता है। हाँ, इतना अधिकार, जैसे कि आपका नन्ना सा बच्चा कभी कभी कह देता है ना, प्यार में डांटता है ना, और वो डांट भी अच्छी लगती है, भगवान के भक्त की भगवान को डांट भी अच्छी लगती है। तो वो कहता है कि मैं किया हूं, मेरा खोल करके देखिए अकाउंट, और उसका फल दीजिए, क्योंकि आप कर्म फल विधाता है। और फिर क्या करो कि मेरा जो वेष्टि शरीर है, सूक्ष्म शरीर, इसे समष्टि भाव को प्राप्त करा दो, और ये स्थूल शरीर भस्म हो जाए यहीं पर, और मुझे आप उस समष्टि भाव को प्राप्त कराने के लिए, सायुज्य प्राप्त कराने के लिए उत्तरायण मार्ग से ले चलिए। और यदि आपको, यद्यपि मुझे तो पूर्ण निश्चय है कि मैंने कभी इस जन्म में ऐसा कुटिल कर्म किया ही नहीं जो मुझे विरजा नदी से पार न होने दे, लेकिन पहला कोई प्रतिबंधक यदि उपस्थित हो जाए उस समय, तो आप यू योध्यास्मद जुहुरान मेन, क्या करो कि मेरे जुहुरान येन यानी जो पाप है प्रतिबंधक, उनको मेरे से अलग करिए, और मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। ये सब उपनिषद है, मृत्यु के समय भी हमें क्या करना चाहिए, कैसा मरना चाहिए, ये भी सिखाती है ये प्रार्थना के मंत्र, रोज बोलने चाहिए। और इसका हाँ, तो मृत्यु के समय ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र में कहा कि उपासक ऐसा भगवान से संवाद स्थापित करता है, ये नहीं कि ये सौंपना बाकी रह गया, वो पहले ही सौंप देता है जो जिसको देना है, और अपना भविष्य सुधारने के लिए मृत्यु के समय ईश्वर से इस प्रकार का संवाद स्थापित करता है। वो रोज अभ्यास करना चाहिए दो चार मिनट बैठ करके कि मान लो हमारा ये अंतिम समय है, इस समय इन मंत्रों का अर्थ जैसा जैसा है ऐसा ईश्वर से हम संवाद कर रहे हैं। तो अंतिम समय में भी जीवन भर जैसा अभ्यास होगा ऐसा ही याद आता है ना। यदि आत्मज्ञान की ये नहीं है पूर्ण योग्यता, तो मृत्यु के समय भगवान के साथ संवाद करते करते शरीर छूट जाए तो भगवत धाम में जाएंगे ना, वहां आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है आत्म पुरुष को जानो। सबसे ऊंची बात तो है कि यही शरीर रहते रहते अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हो जाए। इसलिए कहा कि तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा। क्यों जानना जरूरी है? तो कहते इसलिए कि मावो मृत्यु परिव्यथा। आप वह यानी युष्मान आप लोगों को मृत्यु महापरिव्यथा, तो मृत्यु की पीड़ा न हो, मृत्यु बार बार पीड़ा न पहुंचा सके। एक बार शरीर छूटा तो हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु आपसे विदा ले, उसकी हमेशा के लिए विदाई आप कर सके। बार बार मृत्यु को विदा करना पड़ता है, बार बार मरने का अर्थ ही है ना। तो एक बार उसको भेज दो, फिर आपको कभी वो सताए ही ना, उससे संतप्त ही ना हो। इसके लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं वेद्यम पुरुषम वेद यथा, उस षोड़शकल पुरुष को जानो तो फिर मृत्यु आपको पीड़ित नहीं करेगी, मृत्यु का किसी प्रकार से भय नहीं रहेगा। ये इस मंत्र में आचार्य पिपलाद जी ने समझाया उन छह ऋषियों को। आगे कहते हैं आचार्य पिपलाद जी का ही वाक्य है, जब ये छह के छह ऋषि आए ना आचार्य पिपलाद जी के पास उपनिषद के प्रारंभ में, प्रश्न उपनिषद के कहा गया था, ये छह ऋषि आए और आचार्य पिपलाद जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। लेकिन उन्होंने कहा कि बस अभी आए और तुरंत ही हम बताएं ऐसा नहीं होता। यद्यपि आप लोग तपस्वी हो और हम जानते भी हैं कि बड़े बड़े गुरुकुल चलाते हो, व्यस्त भी हो, लेकिन एक वर्ष का तो समय अपने गुरुकुल से निकालना पड़ेगा और मेरे पास रहना पड़ेगा, और फिर एक वर्ष के पश्चात प्रश्न पूछने की अनुमति, और फिर वो जान पाऊंगा। यदि आपके प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूं तो उस समय दूंगा एक वर्ष के बाद, ये कहा था ना। तो अब उसका उपसंहार कर रहे हैं कि तान ह उवाच एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद नातः परम अस्तीति। इति शब्द है वो जो आख्याय का प्रारंभ हुई थी उसके समाप्त, यानी आचार्य के उपदेश के समाप्ति का द्योतक। तान यानी अपने पास आए हुए जिज्ञासु सुकेशा आदि ऋषियों को, ये तान शब्द बताता है। वाच का अर्थ है कहा, किसने? तो आचार्य पिपलाद जी ने। क्या कहा? कि अहम एतावद एतत् परम ब्रह्म वेद, जो षोड़शकल पुरुष के रूप में बताया है, सोलह कलाओं का अधिष्ठान बताया जिसको, उसी को परब्रह्म के रूप में जानता हूं। अब उससे भी और कोई वेदनीय होगा ऐसी बात नहीं समझना। अब आप लोगों का कोई भी वेद्य शेष नहीं रहा, सब कुछ जानने योग्य था वो जान लिया, वेद्य है ना पुरुष, और उसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये शिष्यों के मन में आशंका न रहे कि और भी कुछ जानना बाकी होगा। साकाष्ठा सा परागति, कठोपनिषद में यमराज जी ने नचिकेता को कहा कि अव्यक्त से परपुरुष जो है परमात्मा, वही परत्व की पराकाष्ठा है, उससे पर और भी कोई होगा ये नहीं समझना, वो निरपेक्ष पर है। इसलिए कहा यही परब्रह्म है, अतः परम नास्ति, इससे पर दूसरा कोई जानने योग्य पदार्थ नहीं है। का मतलब जितना उपदेशनीय था वो सब बता चुका हूं, ये बता दिया। अब आगे वे कहते हैं ऋषि लोग, उनको जो अपेक्षित था परब्रह्म बोध वो इन्हें प्राप्त हुआ, और आत्मज्ञान को कहा गया है सबसे गीता में महान लाभ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। आपको कोई कुछ वस्तु आदि दे करके आपकी अपेक्षित आप पर उपकार करें और उस उपकार से उऋण होने के लिए आप उससे थोड़ी और उत्कृष्ट वस्तु उसे दें या उसके बराबरी की दें तो माना जाता है कि आप उऋण हो गए, प्रत्युपकार किया आपने, पहले उपकार लिया फिर उस उपकार के बदले में दूसरा आपने प्रत्युपकार किया। लेकिन कहते हैं कि आत्मज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया तो उस आत्मज्ञान को छोड़ करके उससे भी बढ़कर के दूसरा कोई लाभ तो है ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञान तो आचार्य पिपलाद जी को ही है और आत्मज्ञान से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु है नहीं जो उनके सामने प्रदान करने से, उनके चरणों में रखने से विद्या का निष्क्रय हो जाए। निष्क्रय कहा जाता है ऋण से मुक्ति को, विद्या निष्क्रय, दूसरा कोई देख नहीं रहे हैं, ये सुकेशा आदि ऋषि। तो मात्र फिर बसता है एक विनम्र भाव ही, प्रार्थना ही, नमस्कार ही, प्रणिपात ही। इसलिए कहा जाता है यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर, जब तक जीवन है, ब्रह्मज्ञानी भी हैं लेकिन जीवित हैं तो उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त किससे हुआ है? ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा और गुरु कृपा से। तो ये कृपा न करते यदि तो आत्मज्ञान न होता। इसलिए वेदांत शास्त्र और वेदांत शास्त्र को समझाने वाले और ईश्वर वह वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु ज्ञेय, ये प्रमाण तथा वस्तुतंत्र होता है ना ज्ञान, तो ये जो ईश्वर है वो है वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु, उसे वस्तुतंत्र का ज्ञेय कहा जाएगा। तो ईश्वर के अधीन वेदांत रूपी प्रमाण के अधीन तथा वेदांत रूपी प्रमाण के व्याख्याता गुरु के अधीन ज्ञान होने से माना गया। ये तीनों जब तक ब्रह्मज्ञानी का भी जीवन है तब तक ब्रह्मज्ञानी के लिए भी वंदनीय है। यावत् जीवम त्रयो वंद्य वेदांतो गुरुरीश्वर। इस शास्त्र वचन को ध्यान में रख करके आचार्य पिपला जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं ये ऋषि। ते तम अर्चयंत त्वम ही न पिता यो अस्माकम् अविद्यायाः परम्पारम् तारयसि इति। नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। तो ते यानी ये सुकेशा आदि छह ऋषि ये क्या कर रहे हैं? तो कहते तम अर्चयंत। तम यानी आचार्य पिपलादम पिपलादम अर्चयंत उनकी अर्चना करते हुए। और अर्चना क्या है उस समय? तो पुष्पांजलि और प्रणाम करते हुए कृतज्ञता ज्ञापन में उन्हें ये कहते हैं कि त्वम नह पिता आप ही। क्या हुआ? वो हंसने से इधर थोड़ा विक्षेप होता है ना। तो त्वम ही न पिता आप ही हमारे पिता हैं। तो पिता होते हैं पांच प्रकार के। पिता शब्द का प्रयोग पांच के लिए आता है। जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरस्मृता। ये पांच पितर माने जाते हैं। पितर यानी पिता। एक है जन्म देने वाला, दूसरा है उपनेता यानी उपनयन संस्कार करता, तीसरा है विद्या दान करता ज्ञान दाता, चौथा है अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला पांचवा। तो ये पांच प्रकार के पिता होते हैं। उनमें से आचार्य पिपला जी इन छह ऋषि यों के पिता हैं। तो किस प्रकार के पिता होंगे? विद्यादाता के रूप में और भयत्राता के रूप में। ये दो पिता के लक्षण आचार्य पिपला जी में घटेंगे ना, कि ये भयत्राता भी हैं, इनके मृत्यु भय से रक्षा करते हैं और विद्यादान कर कैसे रक्षा करेंगे? विद्यादान द्वारा। तो विद्यादाता तथा भयत्राता हैं आप हमारे, इसलिए आप हमारे पिता हैं और पिता होने से पूजनीय है। पितृत्व का वो ये दोनों लक्षण इनमें घटता है, इसका ज्ञापन करने के लिए ये भी लिखते हैं कि यो अस्माकम् अविद्याया परम्पारम् तारयसी। अस्माकम् यानी अस्मान हमें, अविद्याया परम्पारम् तो अविद्या है संसार का कारणभूत अज्ञान यानी सकारण संसार सागर, और संसार सागर का वह पार है मोक्ष, अविद्या की निवृत्ति। तो मोक्ष रूपी जो अविद्या का परम्पार है वह प्रदान करते हो। तारयसी का अर्थ है प्राप्त कराना। तो आप हमें, आपने हमें मोक्ष प्राप्त कराया, मुक्ति दिलाई षोडशकल पुरुष के ज्ञान द्वारा। आप हमारे मुक्ति के यानी मृत्यु भय से रक्षा के हेतु बन करके पिता बन गए। अतः नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्य। तो आप परम ऋषि हैं, ऋषि कहते हैं शास्त्रार्थ दृष्टा को, मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं ना, तो उनको खाली शब्द मात्र मंत्र का ज्ञात होता है, ऐसा नहीं, उस मंत्र के अर्थ भी जानते हैं, और ऋषि शब्द का अर्थ ज्ञानी भी होता है। तो परम ऋषि यानी परम ज्ञानी। तो उस समय आचार्य पिपला जी का खूब नाम था वेदार्थ विद्या में, इसलिए परम ऋषि हैं ये लोग भी, ऋषि हैं और आचार्य पिपला जी है परम ऋषि, ऋषियों में ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, विद्वद वरिष्ठ जिन्हें कहा जाएगा, विद्वानों में वरिष्ठ अति ज्ञानी, और उन्हें नमस्कार है, बहुवचन है आदर के लिए, और द्विरुक्ति है उपनिषद की समाप्ति पूर्णता हुई। तो इस प्रकार ये प्रश्नोपनिषद जो है का विचार संपन्न होता है, कल से मुंडक उपनिषद पर चर्चा करेंगे। इति षष्ठः प्रश्न इति प्रश्नोपनिषद समाप्ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।